તારીખ 25/3/1994 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 22 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
फिर भी ध्रुव ध्रुव ही रहता है. तो प्रश्न ये आएगा कि ध्रुव कैसे रहा ध्रुव. यही तो वस्तु का चमत्कार है कि ध्रुव ध्रुव रहता है और परिणमन भी उसी पदार्थ का होता है. शक्ति की ही व्यक्ति होती है और शक्ति की व्यक्ति नहीं होती है, व्यक्ति स्वयं पलटती है, ऐसा भी आएगा. इसका एक दृष्टांत मैं दूं. गुरुदेव भावनगर पधारे थे हमारे यहाँ, रात्रि चर्चा चल रही थी. हमने खुद में एक प्रश्न निकाला, पूछा गुरुदेव को कि साहब ये उपयोग है ज्ञान गुण के पर्याय, उसका ज्ञान शक्ति के साथ कौन सा संबंध है. क्या पूछा हमने, पर्याय को द्रव्य के साथ कौन सा संबंध है, गुण के साथ कौन का संबंध. एक गुण के एक पर्याय लिया हमने प्रश्न में. तो कि उपयोग तो ज्ञान गुण के पर्याय को कहते हैं, दूसरे किसी गुण के पर्याय को उपयोग नहीं कहा जा सकता. ठीक, तो जो उपयोग है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, तो उसी उपयोग को इस ज्ञान गुण से संबंध क्या है ये तो आप बताइए. ये हमारा प्रश्न था. गुरुदेव ने उत्तर बहुत जबरदस्त दे दिया हमको. निमित्त नैमित्तिक संबंध है. देखिए क्या बोले, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दूसरा कोई नहीं बता. एक ही वचन में उत्तर दे दिया, बात खत्म हो गई. क्या कि पर्याय है वो पर्यायत्व है, वो गुणत्व नहीं है. गुणत्व है वो पर्यायत्व नहीं है. एक न्याय से गुण में से पर्याय आती है, तो एक न्याय से गुण में से पर्याय नहीं आती है. जाओ, पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय पर्याय में से आती है, पर्याय पर्याय को लेती है, पर्याय का आधार भी पर्याय है. गुण द्रव्य नहीं है, ये भी न्याय है, वो भी न्याय है, और दोनों न्याय आत्महित में उपकारी होते हैं. ऐसी चर्चा भेद अभेद के संतुलन के लेख में हमने आत्म जागृति में अभी अभी दिया है कि भेद अभेद कैसे जाना जाए. न्याय भी उपकारी है, प्रमाण भी उपकारी है. अगर अकेला न्याय उपकारी होता तो बिना प्रमाण न्याय का काम चल जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है. अगर प्रमाण को ही मुख्य करें तो प्रमाण का पक्ष हो जाएगा, तो व्यवहार का पक्ष हो जाएगा, निश्चय के पक्ष में ही नहीं आएगा. लेकिन प्रमाण भी कुछ हालत में उपकारी भी है, नहीं भी कुछ हालत में उपकारी है. जहां जैसी योग्यता है वहां वैसा उपकार होता है और अपना कार्य आगे बढ़ता है. जैसे हम प्रमाण का एक दृष्टांत देते हैं मां, हमारा हीरा आता है ना, बहने नाक में लगाते हैं, इसमें छोटा सा हीरा होता है. उस हीरा को साफ करने के लिए निकाला, निकाले से हाथ में से गिर गया. छोटी चीज है, गिर गया, राय के दाने जैसा है. अगर वो गतिमान है तो जल्दी नजर आता है, अगर खो करके कहीं स्थितिमान हो गया तो जल्दी नजर नहीं आएगा. ऐसे परिणमता हुआ द्रव्य जो है, वो परिणमन में जो खड़ा है उसको जल्दी नजर में आ जाए, इसलिए प्रमाण प्रधानता से भी बताया जाता है. और इसका सबूत है समय सार की दूसरी गाथा. वहां ऐसा लिया है आचार्य महाराज कुंदकुंदाचार्य देव ने कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है. क्या कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में स्थित रहे तो स्व समय है, ऐसा नहीं कहा। शैली क्या बनाई? आत्मा, जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही इसको हम स्व समय कहेंगे। तो द्रव्य पर्याय में स्थित कर दिया आत्मा, आचार्य महाराज ने द्रव्य को पर्याय में स्थित कर दिया, ऐसा क्यों कहा? ये तो स्व समय सार की नीम की गाथाएं हैं सब, कि सामने वाला कैसे समझेगा, यही एकमात्र श्री गुरु की करुणा रही। एक करुणा से कहा कि सामने वाला खड़ा है पर्याय में, वो पर्याय प्रधानता से ही समझेगा, द्रव्य प्रधानता से समझेगा नहीं तो उसको पर्याय प्रधानता से समझाया जाता है। तो उस तरह से जो भी जितनी भी 47 शक्ति का वर्णन किया अमरचंद्र आचार्य महाराज ने, वो शक्ति का शुद्ध परिणमन कैसे होता है उस पर्याय प्रधानता से ही इसका वर्णन किया है। यही कारण है कि जीव को अच्छी तरह कैसे समझ में आए, अच्छी तरह कैसे मालूम पड़े, ऐसा दृष्टिकोण गुरु का होता है और उसी दृष्टिकोण से वो निरूपण करते हैं। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा सभी पढ़कों से समझे तो कहीं असमाधान नहीं रहता है। ये द्रवगुण पर्याय वाली जो बात है या उत्पाद वे ध्रुव वाली जो बात है, ये प्रश्नोत्तर माला के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भाव भाषण होना उसमें कठिन है। जब कोई जीव को ऐसा महसूस होता है कि अनंत काल से मैं दुखी हूं, वर्तमान में भी दुखी हूं, दोषी भी हूं, मेरे में दोष और दुख प्रकट अनुभव में आ ही रहा है, कोई ऐसा कौन सा मैं अवलंबन लू या मेरा मूल स्वरूप कैसा होगा कि जिसको जानने से मेरी ये दूषित और दुखी अवस्था का अभाव हो जाए। ऐसे ही जिज्ञासा पूर्वक अपने मूल स्वरूप को खोज करके अगर कोई जानता है और उनका अपना मूल स्वभाव का पता लगता है, तभी प्रथम उसको द्रव्यगुण पर्याय का यथार्थ भाव भाषण होता है। क्यों? कि अवस्था का तो उनको मालूम पड़ गया कि ये अवस्था है और ये बदलने लायक है। जब बदलने लायक है इसका मतलब ये निकलता है कि बदलने योग्य है, इसलिए बदलने लायक है। अगर वो नहीं बदली जाती तो बदलने का प्रश्न भी खड़ा नहीं होता। तो अवस्था एक बदलती हुई चीज है, लेकिन पदार्थ मूल में मुंह कैसा हो, अपना मूल त्रिकाली स्वरूप का जब भाव भाषण होता है उसी वक्त पता चलता है कि ये पदार्थ तो वैसा का वैसा त्रिकाल है और अवस्था बदलती रहती है। जबकि एक ध्रुव है एक उत्पाद वेय रूप है, दोनों का धर्म परस्पर विरुद्ध है, एक नित्य है एक अनित्य है, फिर भी एक ही सत्ता का दो अंग है। और ऐसा सही भाव भाषण स्वरूप की पहचान या भाव भाषण के काल में ही ये यथार्थ रूप से ज्ञान में आता है। इसके पहले अगर कोई ग्रंथों से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रश्नोत्तर माला से, तो उसका भाव भाषण इस तरह से नहीं आता है। जो भाव भाषण के काल में आता है उस प्रकार से वो नहीं आता है। इसलिए बिना भाव भाषण ये विषय ज्ञान में समझ में अधूरा रहता है। भले ही क्षोभ सम में अधूरा नहीं लगे लेकिन है अधूरा, ये मानना चाहिए। जी
सामान्य
निमग्न है
उसने के लिए ऐसा लेते हैं
हाँ सभी पर्याय हाँ हाँ
निमग्न
है
और उसी को व्यक्ति का विषय कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं।
हाँ हाँ ठीक है।
भावी की पर्याय निमग्न है उसमें से आती है ऐसा वो 85 गाथा के साथ इसका
ठीक है
मेल बैठता है।
ठीक है
फिर भी वो गुरुदेव ऐसा कहते हैं वो परम पारनामी भाव है उसमें से पर्याय आती है उसको दृष्टि का विषय कहते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उसका पर्याय से लेना लेना
कुछ
नहीं है
कुछ नहीं है
पर्याय आती है न जाती है। तो ये दोनों विवक्षाएं एक साथ
है दोनों विवक्षाएं एक साथ है और दोनों सही है दोनों सही है ऐसी बात है। क्यों कि जहां लेना देना नहीं है वहां पर्यायत्व पर्यायत्व में ही है गुणत्व में और द्रव्यत्व में नहीं है। क्या पर्याय का पर्यायत्व क्या है इस 80वीं गाथा में वो लिया कि जो अर्जुन को जानते हैं द्रव्यत्ते ही गुणत्ते ही पज्जायत्ते ही ऐसा लिया है गुणत्व रूप में द्रव्यत्व रूप में और पर्यायत्व के रूप में जानेगा पना लिया तो मैंने पना तो जो पर्याय पना है वो पर्याय पना है वो गुण पना भी नहीं द्रव्य पना भी नहीं है। अब देखिए एक पदार्थ विज्ञान का विषय है अंक गणित का विषय नहीं है। क्या ये पदार्थ विज्ञान का विषय है अंक गणित का विषय नहीं है। तो पदार्थ विज्ञान एक साइंस है साइंस को साइंस की दृष्टि से समझा जाता है अंक गणित के दृष्टि से वो समझ में नहीं आएगा। अगर कोई साइंस के विद्यार्थी होंगे तो मैं इसका दृष्टांत दे सकता हूँ कि जैसे हमारी ये मार्बल है ना मार्बल जो हम लगाते हैं फ्लोरिंग में आजकल मंदिर जी में लगाते हैं संगे मरमर उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट। और ये चूना आता है जो हम दीवार पर लगाते हैं वाइट वॉश करते हैं इसका केमिकल फॉर्मेशन भी CaCO3 है। विज्ञान इसको भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं उसको भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं दोनों में कितना अंतर है। चूना चिकना होता है वो दीवार पर चौंध जाता है जबकि इसका पाउडर किया जाए इतना रूखा होता है रेत की तरह उतना रूखा होता है कि उसमें बिल्कुल चिकास है ही नहीं बिल्कुल रूखा ही है। अब साइंस वो कहता है कि पदार्थ कुछ भी हो इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो इसके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। क्या इसके धर्म अलग अलग हो सकते हैं वही पदार्थ का। तो विज्ञान है वो विज्ञान के दृष्टिकोण से ऐसा क्यों नहीं चलता है वहां विज्ञान तो विज्ञान की दृष्टि से समझ सकते हैं अंक गणित की दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वहां तो CaCO3 है वहां CaCO3 है ऐसा नहीं चलता है। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी वो की वो होती है तो भी CaCO3 है वो केमिकल फॉर्मेशन है जबकि इसका चिकनापना रूखापना ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका वो दोनों में बिल्कुल उल्टा सुलटा है। उस तरह से ये आत्मा के विज्ञान में भी ऐसा है कि ध्रुव में अनंत पर्याय गर्भित है बुद्ध भविष्य की टोडर मजी ने लिया कि नहीं जो निश्चयाभाषी पर्याय को नहीं मानता है सातवें अधिकार के प्रारंभ में कि तू पर्याय को नहीं मानता है और द्रव्य को मानता है ना द्रव्य को तू क्या समझा है अनादि अनंत पर्यायों का पिंड द्रव्य है क्या कहेंगे वहां। तो द्रव्य को पर्याय प्रधानता से बताया जा सकता है और लक्ष्य लक्षण की चर्चा में उपयोगो लक्षणम को द्रव्यपने से अभेद कहा पर्याय को द्रव्यपने से ले लिया। तो द्रव्य को द्रव्य की मुख्यता से भी दिखाया जाता है गुण की मुख्यता से भी दिखाया जाता है पर्याय की मुख्यता से भी दिखाया जाता है। वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा भाव भाषण में आए बिना समाधान हो सकता नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय हम क्यों करते हैं, यानी ज्ञानियों ने शास्त्र स्वाध्याय का व्यवहार क्यों स्थापित किया, इसलिए कि भाव भाषण होवे। भाव भाषण कराने के लिए स्वाध्याय का व्यवहार है, भाव भाषण तक हमें पहुंचना है। सबसे पहले दूसरे दूसरे प्रश्न को गौण करके, पहले भाव भाषण कैसे होता होगा, यही मुद्दे पे हमारा लक्ष्य जाना चाहिए, यहाँ हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए और इसी दिशा में हमारा विकास होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए कि पहले निर्णय कैसे हो, भाव भाषण कैसे हो। जो पहले जानने लायक समझने लायक चीज है उसको ही नहीं समझे और दूसरी दूसरी बातों में प्रश्नों में हम उलझते रहेंगे, तो पहले जो समझने योग्य है वो तो नहीं समझे, आगे की बात कैसे समझेंगे। जो प्रथम कक्षा में पास नहीं होता है वो दसवीं का प्रश्न कैसे सॉल्व करेगा, कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे इस शिविर में भी मेरा तो ये अनुरोध है कि भाव भाषण के विषय में हो सके इतना प्रश्न उठाइए, हो सके उतनी चर्चा करिए, हो सके उतना स्वाध्याय करिए, दूसरी सब बात को गौण रख करके। क्यों कि लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सुखदायी। शास्त्र क्यों कहे, लक्ष्य मैंने भाव भाषण होने के लिए, यही तो हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन को छोड़ करके हम स्वाध्याय करेंगे, शिविर करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारी निष्फलता ही निष्फलता बनी रहेगी। तो ये बात है इसमें, इस विषय में जितना भी हमारे पास समय बचा है, हमारी शक्ति का इसी विषय में हम प्रयोग करें तो कुछ न कुछ सार्थकता होने की संभावना है। कोई बात नहीं है, समय है, 5 मिनट है।
जो ये अनुभूति है तो मैं ही हूँ, तो अनुभूति में जो प्रश्न आया था कि ये द्रव्य है या पर्याय, उसका जवाब दिया था ये न द्रव्य है न पर्याय, ये वही क्या पंचाध्यायी का
अनुभव स्वरूप है।
तो फिर इसे हम दृष्टि का विषय भी कह सकते हैं।
हूँ, यस, बराबर कह सकते हैं, यही दृष्टि का।
तो हम पर्याय रहित तो कहते हैं ना,
लेकिन जो अनुभव स्वरूप है वही द्रव्य है, यही स्वभाव है, वही आत्मा है। जिस द्रव्य को हम द्रव्य का भेद में ले जाते हैं पर्याय से अलग करके, वहां तक हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है वो कुछ कल्पना युक्त है, कुछ कल्पना युक्त है, क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव है उसमें पर्यायत्व जैसा नहीं है वैसे द्रव्यत्व का भेद भी नहीं है। जैसे उसमें पर्यायत्व नहीं है यानी पर्याय रहित पना है, वैसे ही द्रव्य का भेद रहित पना है, तब जब तो ये अनुभव स्वरूप है। उसी का नाम कभी द्रव्य कहा जाता है, कभी ध्रुव कहा जाता है, कभी नित्य कहा जाता है, कभी कुछ जो भी कहा जाता है, कभी आत्मा कहा जाता है, कभी स्वभाव कहा जाता है, कभी ज्ञान मात्र कहा जाता है, कभी अनुभूति कहा जाता है, लेकिन जो है सो वही है, ये बात है। और ये स्वभाव द्रव्य में भी पाया जाता है, गुण में भी पाया जाता है और पर्याय में भी पाया जाता है, फिर भी न द्रव्य रूप है न गुण रूप है न पर्याय रूप है, ऐसी बात है। न द्रव्य और पर्याय उभय है, दोनों नहीं, इसका नाम अनुभव, दोनों को नेगेटिव कर दिया।
दोनों नहीं तो कुछ भी नहीं,
नहीं। उतना स्थूल नहीं लेना है उतना। अगर जो नित्य होता तो पर्याय उपयोग में पाया नहीं जाता, अगर अनित्य रूप पर्याय रूप होता तो निविनश्वर हो जाता, रहता नहीं। केवल नित्य होता, केवल द्रव्य रूप होता, केवल ध्रुव रूप होता और पर्याय में आता ही नहीं तो उपयोग में इसमें पता नहीं लगता। अच्छा, देखिए आप हीरे की चमक में अकेली चमक देखते हैं या हीरा के साथ चमक को देखते हैं?
चमक को चमक रूप में ही देख रहे हैं, हीरा देख
रहे हैं। हाँ ये
जरा सोच करके बोलिए, जरा सोच करके बोलिए। कोई पागल बोल देंगे अपने को, कहेंगे को कोई है पागल कि चमक को देखते हैं और हीरा को नहीं देखते हैं, कैसी बात है? हीरा बिना चमक कोई अदर लटकती है क्या? हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि अनुभव स्वरूप है, इसलिए तो कहते हैं कि अनुभव स्वरूप है। बोलिए। वो वर्तमान स्थिति को पर्याय कही है, उत्पाद वाली दशा को पर्याय नहीं कही है, त्रिकाली की वर्तमान पोजीशन को वहां अवलंबन के योग्य होने से वर्तमान भेद को पर्याय ऐसा नाम दिया है। पर्याय कहकर के, पर्याय कहकर के उत्पाद वाली पर्याय की चिंता छुड़ा दी है, लेकिन वो पर्याय नहीं है। इस विषय कारण इसलिए कि अवलंबन में वो कारण होते हैं वर्तमान द्रव्य, और वो शुद्ध है, और शुद्ध पर्याय का वो कारण, कार्य का वो कारण इस वक्त इंस्टेंट बनता है, उसी वक्त बनता है, इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में। आइए, ये विषय तो अधिक सूक्ष्म है, कभी लेंगे।
टाइम हो गया भाई, अब 5:15 हो चुके हैं।
हाँ, उस द्रव्य को ही कारण पर्याय कहा है, ठीक बात।
अब समय हो चुका है शंका समाधान का, अब सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे पास अब शंका समाधान की एक भी पर्ची नहीं है, और जो मैंने अपने प्रश्न पूछे थे वो इसीलिए पूछे थे, इसलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपनी भाव वासन संबंधी सारी चर्चाएं भाई जी से स्वयं स्पष्ट कर लें। हमारे अलवर के मुमुक्षु भाई कहा करते थे, भावनगर से आप क्या माल लाए, मंजी मैं भावनगर वालों को ही आपके लिए यहाँ बुलाऊंगा, इसलिए उन्हीं से आप डायरेक्ट पूछें। और भी सबसे निवेदन है, आप अपनी शंकाओं का जरूर समाधान करें और पर्चियां मुझको दे दें।
अभी भाई जी के द्वारा यहाँ शंका का समाधान जो हुआ बहुत अच्छे ढंग से हुआ, और जिन भाइयों की जो शंकाएं हैं वो लिख करके हमको पर्ची में दे दें तो उनका कल अपन उनका पहले नंबर पे आएगा जो पहले देगा।
अर्लियर कर
वो तो अपन रात को सोच लेंगे,
ढाई से 3:30 कर।
अब अपना भोजन का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद में 7 बजे से 8 बजे तक भक्ति का कार्यक्रम अपना भक्ति का कार्यक्रम मंदिर जी में जैसे अपना कल और परसों चलता आया है उसी प्रकार से वहीं उसी जगह पे चलेगा, और 8 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक के इस तरह से 2 प्रवचन अपने उसी जगह वहीं पर चलेंगे। एक छोटा सा निवेदन मैं और आप लोगों से कर दूं कि आपस में अपन व्यर्थ की चर्चाओं में समय न गंवा करके अपन जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसी में रहें तो वो अति उत्तम रहेगा। उन लोगों का जो भी कार्यक्रम है उनके बारे में हमारा पूरा मैनेजमेंट को हमको सहयोग मिल रहा है, किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है, आप लोग फालतू की बातों में न जाएं। उन लोगों का जो कार्यक्रम उन्होंने जो नया फिक्स किया है उस सारे से हम अवगत हैं, और हमारी राय से ही उन्होंने सारा कार्यक्रम फिक्स किया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, किसी तरह की कोई बात नहीं है, और अपना कार्यक्रम शाम को वहाँ सुचारू रूप से चलेगा, और सवेरे का जैसा भी अपना प्रोग्राम है वो हम रात को उसी समय वहीं घोषणा कर देंगे। यहाँ जो अब 8 बजे से 9 बजे तक का प्रवचन है वो तो पंडित जी श्री देवीलाल जी मेहता उदयपुर वालों का है, और उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक का जो प्रवचन है भाई वो भाई जी का श्री शशिकांत भाई सेठ जो भावनगर से पधारे हैं उनका चलेगा।
एक कैसेट एवं सत्साहित के विषय में थोड़ी सूचना आपको देनी है कि कैसेट और ये सत्साहित जो आए हुए हैं वो सभी अपना जो ऑफिस है कार्यालय का, उसके बाजू में जो बरामदा है उसमें लगे हुए हैं, एक तरफ कैसेट लगे हुए हैं, एक तरफ जो है वो साइट लगा हुआ है। जिन भाइयों को चाहिए वो सब वहां से ले लें। विशेष सूचना ये देनी है कि जो 5 कैसेट का सेट जो 100 रुपए का था, वो आगरा मुख्य मंडल की ओर से 75 रुपए रखा गया था, इसमें से श्री शांतिलाल जी चौधरी भीलवाला की तरफ से 2 रुपए कैसेट और कम करके 13 रुपए का कैसेट रखा गया है, और वो 5 कैसेट जो एक बसंत भाई जी का है, 2 भजन के हैं और 2 बहरा के में भजन के हैं, ये सेट आपको 65 रुपए में वहां मिलेगा। और 5 कैसेट आदरणीय सत्य भाई जी के जो यहाँ हुए हैं वे भी 65 रुपए में आपको 13 रुपए प्रति कैसेट के हिसाब से वहां मिल सकेंगे। अब तक जो कैसेट हुए हैं वे सब वहां उपलब्ध हैं, जिन भाइयों को चाहिए वहां से वे ले लें। और पुस्तकों में भी श्री शांतिलाल जी चौधरी भीलवाला की तरफ से 10% जो कीमत है वो घटा करके वहां से लेने की विनती है। कैसेट जो है इसमें एक कैसेट जो 12 भावना का है वो 90 मिनट का है, बाकी सब कैसेट 60 मिनट के हैं।
गुण गुणी अभेद लेना या प्रदेश अभेद लेना या द्रव गुण पर्याय अभेद लेना, लक्षण लक्षण की अभेदता में द्रव्यपणे से अभेद लेना। द्रव्यपणा अलग अलग नहीं है ऐसा स्पष्टीकरण लक्षण लक्षण की चर्चा में खुद आचार्य महाराज ने परिशिष्ट में दिया है। वहां प्रश्न उठाया है उन्होंने कि ऐसा कौन सा भिन्न लक्ष्य है जो लक्षण से भिन्न नजर आता है। तो वहां कहे कि लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं है क्योंकि द्रव्यपणे से उसकी अभेदता है। तो वहां द्रव्यपना देखना है और पर्यायत्व को देखना नहीं है। तीसरा, निदान करने पर मुनि चारित्र से च्युत होते हैं या सम्यक्त्व से भी, बहुभाग तो सम्यक्त्व से भी च्युत हो जाते हैं। निदान करने से चारित्र से तो च्युत हो ही जाते हैं, किंतु निदान है ये लोभ है और मुनि दशा में ऐसा लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुख बुद्धि से निदान होता है। जहाँ सुख बुद्धि होती है वो अभिप्राय को बदल देती है, वो अभिप्राय सूचक है सुख बुद्धि। सुख बुद्धि पूर्वक निदान आया तो सम्यक्त्व से भी च्युत हो जाएगा। एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रियों को विपरीत ज्ञान के अलावा संशय अनध्यवसाय भी होता है क्या? उसको मन नहीं है, विपरीत ज्ञान तो पूरा ही पूरा है लेकिन मन नहीं है, इसलिए मन में जो भेद पड़ते हैं ऐसे भेद नहीं इसके परिणाम में उठते हैं संशय तर्क आदि का, लेकिन विपरीतता तो खास करके जो पर्याय बुद्धि है उसमें तीव्रता आती है। जिस पर्याय में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, असंगनी पंचेंद्रिय तक जो भी कर्म जनित अवस्था होती है उसकी बहुत तीव्र पकड़ हो जाती है, उस पकड़ को खुद सोच ही नहीं सके ऐसी स्थिति मन रहित पना वहाँ हो जाता है, और उसी के उस परिणमन में गर्भित रूप से सभी प्रकार की विपरीतता पड़ी है ऐसा समझ लेना चाहिए। अरहंत के द्रवगुण पर्याय व अपने द्रवगुण पर्याय में अंतर नहीं का क्या अर्थ है? अरहंत के द्रवगुण पर्याय व अपने द्रवगुण पर्याय में, द्रव्यगुण में तो फर्क नहीं है लेकिन पर्याय में जो फर्क है वो ज्ञान जानता है। निर्णय करने के लिए यहाँ अरहंत के पर्याय की प्रधानता दी है कि जैसा अरिहंत का पर्याय शुद्ध है वैसा ही इसका द्रवगुण है, ऐसा निर्णय कराने हेतु लिया है और उसी अनुसार अपना स्वरूप का निर्णय करने की यहाँ बात है। अपने पर्याय का निर्णय वहाँ नहीं होता है, यहाँ स्वरूप का निर्णय होता है। तो वहाँ पर्याय को गुण में और गुण को द्रव्य में समाविष्ट कर देना, ऐसा वहाँ अभिप्राय भी लिया है। लेकिन अरहंत के द्रवगुण पर्याय जैसे होते हैं वैसे ही छद्मस्त के द्रवगुण और पर्याय नहीं होती है, पर्याय तो उसकी जो है सो है। पंडितों के शास्त्र ही संसार है, कृपया इसका खुलासा कीजिए। पंडितों के शास्त्र ही संसार इसलिए है कि जो सिर्फ शास्त्र का अध्ययन ही करते रहते हैं और इसमें ही उलझे रहते हैं लेकिन अपने अनुभव में सुलझते नहीं, इसलिए वो बाहर ही बाहर रहता है। बाहर मैंने संसरण, मैंने आत्मा से सर जाना, बाहर आ जाना, इसी का नाम संसार है। जो शास्त्र भीतर में जाने के लिए आदेश उपदेश देते हैं वही शास्त्र पढ़ करके बाहर रह जाना, भीतर में नहीं जाना, तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। तो जो संसार था वो कब रह गया, क्या कुछ नया तो इसमें नवीन कार्य तो कुछ हुआ नहीं अंतर में जाने का। इसलिए पंडितों का शास्त्र ही संसार है और इस शास्त्र पढ़ने वाले बहुभाग विवाद में ही होता, ऐसा निर्भ्रांत दर्शन की पगडंडी में लिखा है। सो उसमें एक आत्मसिद्धि की गाथा है, प्रत्यक्ष सदगुरु समन ही परोक्ष जिन उपकार, ऐसा लक्ष्य हुए बिना उगे न आत्म विचार। इसका संदर्भ में ये बात आई है कि प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का जो योग है उसकी बराबरी में जिनेन्द्र का परोक्ष उपदेश भी नहीं है, जबकि ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थान में है और जिनेन्द्र तो जिसके वचन तेरहवें गुण स्थान में से निकले हुए हैं। फिर भी प्रत्यक्ष परोक्ष का बहुत बड़ा अंतर होता है उपदेश में। अगर ऐसी बात ध्यान में नहीं आई, क्या कारण से ध्यान में नहीं आई, वही कारण है इसमें कि आत्महित का विचार नहीं है, वही कारण है। क्या आत्महित का विचार उसमें नहीं रहा, वही कारण है, वरना प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर भाषित हुए बिना रहे नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्रत्यक्ष ज्ञानी के योग बिना सन्मार्ग का पता लगता नहीं है। इसका महत्व जिसको भाषित होता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है, जिसको इसका महत्व भाषित नहीं होता है तो उसको इसके लिए समझना चाहिए कि आत्महित का विचार वर्तमान में तो उसे नहीं है, वो कहीं और दृष्टिकोण से और हेतु से ही इस क्षेत्र में प्रवर्त रहा है। आत्महित का हेतु का अभाव है, ये बात निसंशय सत्य है। आत्महित का विचार उगा ही नहीं है उसको, आत्मा का विचार करता है लेकिन आत्महित के लिए नहीं, कुछ अन्य हेतु के कारण से वो करता है, ऐसा अवश्य बनता है तभी ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता है। ये बात अनुभव से सिद्ध की जा सके ऐसी है। बहुत बड़ा महत्व है इस प्रकरण में प्रत्यक्ष योग का। शरीर की बीमारी होती है, वहाँ भी डॉक्टर के पास जाए बिना चलता नहीं है। आप अपनी बीमारी का कितना भी वर्णन करो, लेकिन डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन किए बिना इसको दर्द का निदान करने या इलाज करने के लिए सक्षम होते ही नहीं। ये तो कोई सामान्य बात नहीं है कि आत्मा अनादि से संसार में भटकती है, दुखी हो रही है, अनंत काल से इसका इलाज उसको नहीं मिला है। धर्म के क्षेत्र में कहलाने वाली धार्मिक प्रवृत्ति तो बहुत की है, कहलाने वाली है ही नहीं, उसमें तो कसर नहीं रखी है। द्रव्यलिंगित गया है, नवमी ग्रीवक भी गया है इसके फल में। फिर कुछ ऐसी बात रह जाती है, इसके लिए प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष चाहिए ही चाहिए। ये गंभीर रोग है, अनादि का क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज मैंने जो रोग घर कर गया हो, निकल नहीं सके ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में जो आप देखिए कि ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर के अलावा कोई इलाज नहीं होता। आपका प्रश्न है अजीत भाई, प्रायोरिटी में लेना है क्या इस पर्चा? नंबर से ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे प्रश्न है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानने का है, क्या पर को जानने का आत्मा का स्वभाव नहीं है? ऐसा नहीं है, आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, बनारसी दास जी का पद है, शक्ति मैंने स्वभाव। आत्मा को पर के जानने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु पर को वेदने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा है। ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, सपर प्रकाशक शक्ति हमारी शक्ति है, वो आत्मा का निश्चय स्वरूप है क्या? लेकिन आत्मा पर प्रकाशक भी है, पर को जानता है, ऐसा कहना वचन व्यवहार है, ऐसा जानना वो सद्भूत व्यवहार है, और ऐसा कहना असद्भूत उपचरित व्यवहार है। तो व्यवहार ने दो प्रकार के हैं, ज्ञान नय भी है और वचन नय भी है। ज्ञान नय और वचन नय में अंतर जिसको मालूम नहीं पड़ता है, वो वचन भेद ब्रह्म भारी उसमें आ जाते हैं, वचन के भेद अंतर जो है उसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे नियम सार के 159 गाथा में ऐसा कहा, ऐसा स्पष्ट लिखा है कि केवली भगवान व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं, ये वचन नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं वहां कैसे नहीं है? कि केवली को नहीं होते हैं इसलिए नहीं है, केवली को नहीं होता नहीं है तो केवली नहीं से कहां जानते हैं? केवली तो केवल ज्ञान से जानते हैं, नए ज्ञान से जानते ही नहीं। लेकिन लिखा आचार्य महाराज ने ऐसा कि वो व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक को जानते हैं ऐसा कथन जो है वो व्यवहार नहीं से है, ज्ञान नहीं वहाँ उपस्थित ही नहीं है, यहाँ वचन नहीं की बात चली है। तो कथन नहीं में ऐसा आता है कि आत्मा पर को जानता है, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय होता है। लेकिन स्वपर प्रकाशक शक्ति है वो तो निश्चय स्वरूप आत्मा का है। शक्ति कभी उपचरित नहीं होती, शक्ति तो निश्चय से ही होती है और ये आत्मा का खरा स्वरूप है, मूल स्वरूप है ये तो। इसलिए वहाँ शक्ति में उपचार या व्यवहार लागू होता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का बाह्य जीवन कैसा होता है, उसके बाह्य में किस प्रकार का त्याग होता है। सम्यक दृष्टि जीव के बाह्य त्याग का कोई भी नियम होता नहीं है, आगम में इसका कोई नियम बताया गया नहीं है, इसलिए तो सम्यक दृष्टि को अविरत सम्यक दृष्टि बोलने में आया है। और इसलिए तो वो बाह्य चिन्ह से पहचाना भी नहीं जाता, या ज्ञानी बाह्य से नहीं पहचाना जाता है, यही कारण से तो ज्ञानी की पहचान दुर्लभ या दुष्कर हो गई है, यही तो कारण है इसका। अगर इसका कोई बाह्य में खास चिन्ह होता तो उसी चिन्ह से सभी पहचान लेते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति अविरत सम्यक दृष्टि की नहीं है, क्योंकि वहां सम्यक्त्व को पहचानना पड़ता है और सम्यक्त्व का कोई बाह्य चिन्ह होता नहीं है। चारों गति में सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और चारों गति में सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, सातवीं नरक में भी होते हैं और संगनी पंचेंद्रिय कोई भी तिर्यंच हो सकता है। इसलिए इसका कोई बाह्य त्याग का सिद्धांत रूप नियम है ही नहीं और देखा भी नहीं जाता। हाँ ठीक है, लेकिन वो सम्यक्त्व में नहीं आता। सप्तम सन का त्याग होता है, यानी इस प्रकार की वासना वाली वृत्ति सम्यक्त्व आने पर नहीं होती है, लेकिन यदि किसी को कुछ हो तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं माने, ऐसा नहीं होना, क्योंकि और ऐसा मानने पर इसको कोई अनुमोदन देना है ऐसा भी नहीं माने। जैसे हम एक दृष्टांत लेते हैं, उल्टा मत लेना है, इसका अवलंबन नहीं लेना है। युधिष्ठिर थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि चरम शरीरी थे, वो जुआ खेला के नहीं खेला उन्होंने। पौराण प्रसिद्ध है कि वो जुआ में राज तो हार गए थे, अपनी पत्नी को भी हार गए थे। जुआ खेलने की कोई हद होती है, पैसा से तो खेलते हैं लोग, राज से भी खेला, पत्नी को भी रख दी उसमें, अब क्या करें। हाँ ये क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होते तो हम शंका कर लेते कि भाई उस वक्त गिर गए होंगे, मिथ्या दृष्टि हो गए होंगे, बाद में सम्यक तो आ गया होगा, किंतु वो तो चरम शरीर क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए शंका की भी गुंजाइश नहीं है। किंतु सप्त व्यसन का पालन पोषण करने के लिए ऐसा दृष्टांत हरगिज लेना चाहिए नहीं, ये ध्यान में रखते हुए बात है। तो इसका जो बाह्य लक्षण है ये प्रमुखता है तो चारित्र प्रधानता से है, और वासना की तीव्रता को देखते हुए उसका रस है वो श्रद्धान के साथ अविनाभावी होते हैं, ऐसा बताने के लिए सप्त व्यसन को निषेध किया न किया में आया है, यही कारण है इसका। हाँ ये तो कहा है, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात को कहा है, सप्त व्यसन को तो गौण करा किया है इसके पहले तो।
ये पहले छुड़ाया है।
हाँ
तो पहले ये छूट सकता है या नहीं, इसका निराकरण इससे होता है या नहीं।
ठीक से स्वयं हो जाता है, तो स्वयं ही होता है, समझाने की भी जरूरत इसमें नहीं है, स्वयं होता है। सप्त व्यसन का पाप तो मिथ्यात्व के पाप के आगे कुछ नहीं है, इतना बड़ा पाप है मिथ्यात्व का, लेकिन इसकी भयंकरता हमें भाषित नहीं होती है, तो इसके हटाने का मिटाने का कोई प्रयास भी अंदर में नहीं होता है। तो ये तो तिरियंच को कैसे मिलेगी, नारके को कैसे मिलेगी? भेद रूप तो नहीं, आपने प्रश्न किया कि भेद रूप श्रद्धा है कि नहीं, तो वहां तो भेद रूप श्रद्धा है ही नहीं। कौन से सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं, कौन से कुदेव हैं, सप्त तत्व का क्या विचार है, कुछ नहीं है वहां। वहां तो दो ही भेद पड़ता है, एक आत्मा एक अनात्मा, बस दो का भेद विज्ञान होते ही अनुभूति होती है। अब भाव भाषण अपने आत्मा का होता है और अनात्मा का होता है, भेद रूप वहां परिणमन नहीं होता है। साथ का भेद नहीं पड़ता, देव गुरु शास्त्र का विचार का भेद नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ये सब गुण गर्भित है। जो भी गुण है मनुष्य में, ऐसे गुण सम्यक्त्व आने पर उसमें गर्भित हो जाते हैं, लेकिन भेद रूप नहीं है, अभेद रूप अवश्य है, ऐसी बात है। नहीं देव और हाँ पूर्व भव के संस्कार से होता है उपदेश, तो तिरिंच में संभव नहीं है। उपदेश का संभव है चौथे पांचवें छठे सातवें में, तो उपदेश की कोई संभावना, उपदेश की संभावना हो वहां होता है, वहां क्लियर होता है, लेकिन वो नियम तो नहीं कहे जाता, सिद्धांत तो नहीं बताया जाता। ये तो एक कोई पर्टिकुलर बात हो सकती है, पर्टिकुलर केस में वो बात हो सकती है। पूर्व भव के संस्कार में कोई देवगुरु शास्त्र की बात नहीं है, वहां स्वभाव का संस्कार है। पूर्व भव के जो संस्कार है वो तो आत्म स्वभाव का संस्कार को लेकर के सम्यक होता है। वहां कोई देवगुरु शास्त्र की कोई भेद वाली विचार या चर्चा होती नहीं है। अनंत भगवान को जो द्रव्यगुण पर्याय से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। अनंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से कैसे जाने? उसका जो द्रव्यत्व है, उसका जो गुणत्व है और उसका जो शुद्ध पर्यायत्व है, उससे जाने। पर्याय को गुण में लीन करें, गुणों को द्रव्य में लीन करके स्वरूप का निर्णय कर सकते हैं। ये निर्णय करने की गाथा है, भाव भाषण करने की गाथा है। तो वहां ऐसे तो द्रव्य गुण नहीं जाना जाता, पर्याय में प्रकट हुए हैं गुण और द्रव्य जैसा है वैसा प्रकट हो गया है, उसी से द्रव्य गुण का भी नाप किया जाता है, इस तरह से वो बात है। तर्जनी उंगली को निष्कासित किया गया है, फिर माला में इसका प्रयोग क्यों? ये तो प्रयोजनभूत प्रश्न नहीं है और ऐसा प्रश्न का उत्तर मुझे आता भी नहीं है, ये आप समझ लेना प्रश्नकार के। हमारे यहाँ कुछ मिनटों का ही समय है, उसमें हमारे प्रयोजन का ये प्रश्न करना है। फालतू प्रश्न का हमारे पास समय भी नहीं है और मुझे ऐसा ज्ञान भी नहीं है, ऐसा समझ लेना। 84 सिद्ध क्षेत्र क्यों बताया गया है? ये प्रश्न तो मुझे भी उठा था कि यहाँ 84 ऐसा क्यों नाम है, मालूम नहीं कोई ऐतिहासिक बात होती होगी। इस क्षेत्र का 84 मथुरा कहते हैं ना, कुछ कारण तो होगा ही, जो यहाँ के जानकार हो गए बता देंगे। मैं तो यहाँ से 84 क्या है, 85 क्या है, 83 क्या है, कुछ नहीं जानता। मैंने बात मत करें, क्या कहते हैं
है, 84 के अंदर होता है, इसकी परिधि 84
ठीक है, कोई पौराणिक क्षेत्र उपेक्षित बात है, ठीक है, हो सकता है। जैन धर्म में रात्रि भोजन में मांस खाने के बराबर कहा है, दूध पीने को खून पीने के बराबर बतलाया है, मुमुक्षु के जीवन में अधिकतर देखने में आ रहा है, ऐसे जीवों को क्या सम्यक हो सकता है, खुलासा करिए। ये दोष तो अवश्य है और रूढ़ी के हिसाब से उसको बहुत बड़ा दोष मानने में आया है, वास्तव में इस दोष का सम्यक्त्व के साथ सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इस दोष का अनुबोधन करने लायक नहीं है। घर में जाओगे घिर जाओगे, वन में जाओगे वन जाओगे, ब्रह्मचारी श्री वसंत जी के शब्दों में प्रश्न है कि जाने आने का मार्ग, बनने बिगड़ने का मार्ग तो सामान्य संसारी ही जानते हैं, क्या मोक्षार्थी को भी यही मार्ग कार्यकारी है? घर में जाओगे घिर जाओगे मतलब क्या है कि घर में असत्संग हो, नियम रूप से नहीं होता है, किसी के घर में सत्संग भी हो सकता है, जो धार्मिक वृत्ति वाला परिवार होता है तो सत्संग भी मिल सकता है, लेकिन प्रायः असत्संग होता है, इसलिए ये पद मुख्यता से उसी मुख्यता से लिया होगा। और मोक्षार्थी को तो वन में आने जाने का प्रश्न नहीं है, मोक्षार्थी तो अपना ध्येय जो बनाता है अंतर में वही मोक्षार्थी होता है, और उस भूमिका में वन में आने जाने का प्रसंग नहीं होता है, वन में आने जाने का प्रसंग मुनि दशा में होता है, इस भूमिका में नहीं होता है। सोनागिरी जी के प्रवचनों में आया था कि पर्याय प्रमाण के द्रव्य में ले आती है पर्याय के यहाँ पर प्रमाण के द्रव्य में से आती है, जबकि हमने गुरुदेव श्री के नियम सार की 50वीं गाथा के प्रवचन में सुना कि पर्याय त्रिकाली ध्रुव में से आती है, कृपया अपेक्षा स्पष्ट कीजिए। प्रमाण के दो अंश है, एक त्रिकाली ध्रुव दूसरा प्रकट पर्याय, तो वह नई पर्याय कौन से अंश में से आती है? अब देखिए कि द्रव्यगुण पर्याय के विषय में हमें कहाँ खड़े रह करके इस विषय को समझना है, वो बात मुख्य रहती है। अगर हम ये कहेंगे कि ध्रुव में से पर्याय आती है तो ध्रुव में आना और जाना हो गया, तो ध्रुव ध्रुव कहाँ से रहा, समाधान नहीं हो पाएगा। इस उत्तर से तो कोई समाधान होने वाला नहीं है। फिर भी जब पर्याय और ध्रुव को साथ में लेकर विचार करना है तो अकेला प्रमाण के अलावा वहाँ कौन सी परिस्थिति हमारे ज्ञान में बनती है, ये भी हमें देखना है। जब हम ध्रुव का और पर्याय का एक साथ विचार करते हैं तो हमारे ज्ञान में पर्याय सहित ध्रुव वाला पदार्थ आया कि नहीं आया, और ये प्रमाण का विषय हुआ कि नहीं हुआ। गुरुदेव जो कहते थे वो गुरुदेव की कहने की शैली में ऐसी बात थी कि एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर देते थे, सामने वाले को अभी क्या कहना चाहिए वो अच्छी तरह जानते थे। तो एक प्रश्न का उत्तर एक को कोई एक मिलता है तो दूसरे को इसी प्रश्न का उत्तर कोई दूसरा भी मिल सकता है, इसलिए किसी भी ज्ञानी के या गुरुदेव के एक वचन को पकड़ करके हम बैठ जाएंगे तो हमारा समाधान नहीं होगा। क्योंकि उत्तर देने में कभी कभी अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो जो नहीं समझते हैं उनको समझाने के लिए इस वक्त जो ज्ञान में आया वो कहेंगे। इसलिए ये बात सर्वथा ऐसे ही सबों को लागू पड़ती है, ऐसा नहीं लिया जा सकता। और सभी ज्ञानियों का ऐसा है, गुरुदेव का ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि ये अलिंग ग्रहण की गाथा समय सार में 49 में है। 49 गाथा में अलिंग ग्रहण का एक ही अर्थ घटन किया, और अरसम व गंधम अरूपम स्पर्शम ये प्रत्येक का 6-6 अर्थ किया, जबकि वही गाथा प्रवचन सार में 172 की है, और वही अमृतचंद्राचार्य इसका टीकाकार है। आचार्य भी नहीं बदले हैं, गाथा सूत्रकर्ता भी वही आचार्य है, कुंदकुंदाचार्य है, और उसकी टीका करने वाला दोनों जगह अमृतचंद्राचार्य है। वहां अलिंग ग्रहण में से 20 अर्थ निकाले हैं, और दूसरे जो शब्द हैं उसमें से सामान्य अर्थ निकाल करके उसको छोड़ दिए हैं। तो कहते हैं कि एक ही आचार्य होने पर भी और एक ही सूत्र होने पर भी अलग अलग अर्थ क्यों करते हैं, कि प्रकरण अनुसार वहां ऐसा अर्थ करना उनको उचित लगा है। इसलिए ज्ञानी जब जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, सही कहते हैं, किंतु कैसे सही कहते हैं यह बात हमारी समझ में आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, वरना समाधान नहीं होता और समाधान रह जाता है। तो ध्रुव में से पर्याय आए, इसका मतलब क्या है कि ध्रुव में गुण पड़ा है, उपयोग जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है।